वहां अपने मायके से ससुराल वापस जाने के लिए अर्पिता गेट पर आकर कार में बैठी। जयराज भी कार में बैठ गया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कार में बैठते ही अर्पिता ने पीछे मुड़कर माँ और अभिमन्यु को देखा, जो उसकी कार को जाते हुए देख रहे थे। अर्पिता काफी अपसेट लग रही थी। उसने जयराज की तरफ देखते हुए कहा, कौन सा महत्वपूर्ण काम आ गया था आपको जो आपने इतनी जल्दबाजी में वापस घर चलने के लिए कहा? जयराज ने जवाब नहीं दिया। अर्पिता ने दोबारा पूछा, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जयराज चिढ़ते हुए बोला, क्योंकि हम तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, जबरदस्ती हमसे बात करने के बहाने मत ढूंढो। हमें तुमसे बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मेरा तो यहाँ आने का मन भी नहीं था, लेकिन क्या करें, तुम्हारे राज परिवार के नाम और रुतबे की वजह से हमें तुमसे शादी करनी पड़ी और इसी वजह से यहाँ आना पड़ा। इतना कहकर जयराज चुप हो गया और आंखें बंद करके गुस्सा कंट्रोल करने लगा। ये बातें अर्पिता के लिए नई नहीं थी। 2 साल की शादी में पिछले 1 साल से वो लगातार यही बातें और ताने सुन रही थी। शायद उसे इन चीज़ों की आदत हो गई थी, इसीलिए वो बस थोड़ी उदास हुई और कुछ नहीं बोली। जयराज ने फिर अर्पिता की तरफ देखा। उसे अर्पिता के हाथ में कुछ नजर आया। उसने अर्पिता के हाथ में पकड़े ज्वेलरी बॉक्स को घूरते हुए कहा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अर्पिता ने ज्वेलरी बॉक्स खोला और डायमंड नेकलेस पर हाथ फेरते हुए कहा, ये अभिमन्यु भाई ने गिफ्ट दिया है। जयराज ने उस डायमंड नेकलेस को देखकर मन ही मन कहा, बस इन्हीं महंगे गिफ्ट्स की वजह से तो मैं इसके साथ हूँ, वरना कब का छोड़ दिया होता। अर्पिता जयराज को उदास होकर देख रही थी। जयराज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अर्पिता ने कार की सीट टेक लगाकर चुपचाप बैठ गई। अर्पिता के जाने के बाद अभिमन्यु चुपचाप अपने कमरे में आया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया। तभी उसे इप्सिता का ख्याल आया। वो कितनी उदास लग रही थी और उसका उदास चेहरा याद करके अभिमन्यु इप्सिता के बारे में सोचने लगा। अभिमन्यु ने मन में कहा, अब तो हमारी शादी की डेट बढ़ गई है, शादी में 1 महीना है। इप्सिता खुश हो गई होगी और अब वो इतनी अपसेट नहीं होगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा है। एक काम करता हूँ, अभी उन्हें कॉल करके उनका हालचाल पूछ लेता हूँ, तो मेरे दिल को भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। अभिमन्यु ने जल्दी से शावर लिया और फ्रेश होकर अपने बाल पोंछते हुए कमरे में आकर बैठ गया। बेड पर बैठते ही उसकी नज़र साइड में रखे मोबाइल पर पड़ी। उसने तुरंत इप्सिता को कॉल लगा दिया। बेल बज रही थी, लेकिन इप्सिता ने कॉल रिसीव नहीं किया। अभिमन्यु थोड़ा परेशान होते हुए बोला, ये इप्सिता को क्या हुआ, हमारा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हैं? अभिमन्यु ने एक बार फिर इप्सिता को कॉल किया, लेकिन इस बार भी इप्सिता ने कॉल पिक नहीं किया। अभिमन्यु अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, आखिर बात क्या है, कहीं इप्सिता किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई? अभिमन्यु का दिल थोड़ा घबराने लगा। उसने अपने फ़ोन की तरफ परेशानी से देखा और मन में बोला, आई होप सब कुछ ठीक हो और ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ, और पता नहीं क्यों वो फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर रही। उसी तरफ इप्सिता चुपचाप खोई हुई सी, उदास और मायूस होकर अपने कमरे में बैठी थी। उसने 2 बार अभिमन्यु का कॉल आते हुए देखा, लेकिन एक बार भी रिसीव नहीं किया, क्योंकि उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। उसने अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज पर लगाते हुए कहा, अब ये मिस्टर अभिमन्यु हमें फ़ोन क्यों कर रहे हैं, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर इप्सिता ने अपना फ़ोन टेबल पर रखकर वॉशरूम चली गई। नंदिनी अपना बचा हुआ सामान पैक कर रही थी। वो वापस कमरे में आई, उसने देखा इप्सिता कहीं नहीं थी। तभी उसने इप्सिता को आवाज़ लगाते हुए कहा, ईशु कहाँ हो तुम? इप्सिता ने नंदिनी की आवाज़ सुनकर जवाब दिया, नंदिनी हम यहाँ वॉशरूम में हैं। नंदिनी बेड पर बैठ गई। तभी उसने इप्सिता का मोबाइल फ़ोन देखा जो रिंग हो रहा था। नंदिनी इप्सिता के फ़ोन के पास गई। मोबाइल फ़ोन उठाकर नंदिनी ने देखा कि अभिमन्यु का कॉल आ रहा था। उसे लगा कि इप्सिता को शायद रिंग सुनाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि वो वॉशरूम में थी। नंदिनी फ़ोन उठाते हुए बोली, ये ईशु भी ना पता नहीं कब से वॉशरूम में है, और इसके फ़ोन पर अभिमन्यु जीजू की इतनी सारी मिस कॉल, ये लड़की पता नहीं ऐसा क्यों करती है, हो सकता है वो जानबूझकर कॉल इग्नोर कर रही हो। इतना बोलकर नंदिनी ने अभिमन्यु का फ़ोन कॉल रिसीव करने के बारे में सोचा। वो कॉल रिसीव करने चाह ही रही थी, तभी उसने खुद को रोकते हुए कहा, लेकिन क्या मेरा अभिमन्यु जीजू का कॉल रिसीव करना ठीक होगा, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए? नंदिनी ये बात सोच ही रही थी, उसने खुद से बात करते हुए कहा, अभिमन्यु जीजू ने तो हमेशा इप्सिता की मदद ही की है, तो फिर वो अगर इप्सिता से बात करने के लिए कॉल कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी बात हो सकती है, और ये लड़की अभी इतनी अपसेट है ये तो बात करेगी नहीं। एक काम करती हूँ, मैं ही कॉल रिसीव कर लेती हूँ। नंदिनी ने इतना सोचकर अभिमन्यु का कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, अभिमन्यु ने हड़बड़ाते हुए पूछा, इप्सिता कहाँ थी आप? इतनी देर से हमने कितनी बार आपको कॉल किया, लेकिन आपने हमारा कॉल रिसीव ही नहीं किया, आप ठीक है ना? अभिमन्यु को इतना घबराते देखकर नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया, जीजू मैं बात कर रही हूँ नंदिनी। अभिमन्यु थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, नंदिनी आप, इप्सिता कहाँ है? ये उनका फ़ोन है तो आपने उनका फ़ोन रिसीव क्यों किया? नंदिनी ने सॉरी बोलते हुए कहा, आई एम सॉरी जीजू, वो एक्चुअली इप्सिता थोड़ी अपसेट है और इस टाइम वो वॉशरूम में है, इसलिए मैंने कॉल रिसीव कर ली, क्योंकि मैं जानती हूँ वो इस टाइम किसी से बात नहीं करेगी, तो शायद वो आपसे भी बात ना करे। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने तुरंत नंदिनी से पूछा, इप्सिता अपसेट है, लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ? वैसे भी अब तो शादी की डेट भी बढ़ गई है, अब शादी एक महीने बाद है, उसके बाद भी वो अपसेट है, ऐसा क्या हो गया? नंदिनी ने जवाब दिया, वो एक्चुअली भले ही शादी की डेट बढ़ गई हो, लेकिन इप्सिता के माँ बाप उसे एग्जाम देने के लिए यूनिवर्सिटी जाने नहीं दे रहे हैं, इसी बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। सुबह से उसने मुझसे भी ठीक से बात नहीं की है। वैसे भी जीजू, इप्सिता तो एग्ज़ाम दे नहीं पा रही, लेकिन मुझे तो एग्ज़ाम देने हैं ना, इसलिए मैं कल वापस जा रही हूँ। और इप्सिता ने अपने माँ बाप से बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ उसे मेरे साथ जाने से मना कर दिया। इप्सिता इस टाइम बहुत अपसेट है। नंदिनी ने अभिमन्यु को पूरी बात बता दी। उसने जैसे ही ये पूरी बात सुनी, उसने अपने मन में कहा, अच्छा तो यही रीज़न है जिस वजह से इप्सिता मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अभिमन्यु ये बातें सोच रहा था। उसने नंदिनी से पूछा, नंदिनी आप कल वापस जा रही हैं ना? नंदिनी ने बताया, हाँ जीजू मेरी कल दोपहर की फ़्लाइट है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप भी मुझसे मिलने आएंगे? अभिमन्यु ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप जा रही हैं, हम आपको सी ऑफ करने तो आ सकते हैं। वैसे आप एक काम करिएगा, कल आप इप्सिता को भी अपने साथ लेकर आइएगा। जैसे ही नंदिनी ने ये बात सुनी, उसने अभिमन्यु को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो मतलब आप मुझसे मिलने नहीं बल्कि ईशु से मिलने आएंगे? अभिमन्यु ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, हम तो बस उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि नंदिनी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कोई बात नहीं जीजू, वैसे मुझे अच्छा लगा कि आप इप्सिता के बारे में इतना सोचते हैं। ठीक है, मैं कल उसे अपने साथ एयरपोर्ट ले आऊँगी। नंदिनी ने नंदिनी की बात सुनकर उसे थैंक्स बोलते हुए कहा, थैंक यू सो मच। नंदिनी ने कहा, अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है जीजू, आप बस हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड का ऐसे ही ध्यान रखिएगा। ओके, अभी मैं कॉल रखती हूँ और कल आपसे मिलती हूँ। अभिमन्यु ने भी हामी भरी और फ़ोन रख दिया।
नंदिनी ने इप्सिता का फ़ोन वापस टेबल पर रखते हुए कहा, आई होप मेरे जाने के बाद जीजू इप्सिता को संभाल लें। नंदिनी ये बात सोच ही रही थी तभी इप्सिता वॉशरूम से बाहर निकल कर आई और चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठ गई। नंदिनी ने उसे पूछा, ईशु कल मैं वापस जा रही हूँ तो मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक तो चलोगी ना? जैसे ही इप्सिता ने ये बात सुनी, उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल चलेंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्रमशः